हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद को शिवांशा के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जरूरी था कि वो मिहिका को उसके इंतजार के रिश्ते से आजाद कर दे। हालांकि मिहिका से मिलते वक्त वेद को अंदर से काफी अजीब महसूस हो रहा था, एक गिल्ट भरी फीलिंग। पर कभी ना कभी तो उसे मिहिका का सामना करना ही था। बस यही सोचकर वेद आज अक्षत के साथ बंसल ग्रुप आया था। मिहिका और वेद की गाड़ी एक साथ बंसल ग्रुप के अंदर दाखिल हुई थी। वेद ने अक्षत को अंदर भेज दिया था। उसके जाने के कुछ मिनट के बाद वेद बाहर निकला और ठीक उसी वक्त मिहिका भी बाहर आई। मिहिका बंसल कोई आम लड़की नहीं थी, वो उम्र में लगभग 35 साल की थी और बंसल ग्रुप को उसी ने संभाल रखा था। अगर कोई वेद और मिहिका को साथ देखता तो वे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होते। वेद की तरह मिहिका भी एक डिसिप्लिन परफेक्ट बिजनेस वुमन थी। मिहिका ने इस वक्त लाइट स्काई ब्लू कलर का ऑफिस सूट पहना हुआ था, लगभग 5 फुट 7 इंच हाइट, कंधे से थोड़े लंबे बाल जो बिल्कुल स्ट्रेट थे, गोरा रंग और एक स्ट्रांग गोरा। जितनी उसकी पर्सनैलिटी दमदार थी वो उतनी ही दिखने में खूबसूरत थी। मिहिका ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे जो उसने वेद को देखते ही निकाल दिए थे। वेद ने कुछ पल मिहिका की तरफ देखा, फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिहिका के पास जाते ही वेद ने धीमी गहरी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस बंसल। अब क्या इतने फॉर्मल हो गए हो कि मुझे मेरे नाम से भी नहीं बुलाओगे? कुछ तो वजह रही होगी जो वेद सिंह चौहान खुद चलकर मुझसे मिलने के लिए आया है, मिहिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बैठकर बात करें? वेद ने भौंहें उठाकर पूछा। बेशक, बातें तो बहुत सारी बाकी हैं, मिहिका ने हां में सिर हिलाया। वो वेद के साथ ऑफिस में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मिहिका ने वेद को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उसने ड्राइवर को बाहर आने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। वेद उसके पास पैसेंजर सीट पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। मिहिका ने गाड़ी स्टार्ट की। वो जानती थी कि उसे बात करने के लिए वेद को कहां लेकर जाना है। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति छाई रही। वैसे काफी लकी है वो लड़की जिसने वेद सिंह चौहान को अपने उसूलों से हटने पर मजबूर कर दिया। कंग्रेचुलेशंस, मिहिका ने गाड़ी चलाते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। वेद ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, शी इज नॉट माई वाइफ। जैसे ही वेद बोला, मिहिका को झटका सा लगा और उसका पैर ब्रेक पर चला गया। एक झटके में गाड़ी रुक गई। उसने वेद की तरफ हैरानी से देखा तो वेद ने हां में सिर हिला दिया। लगा ही था, जिस तरह से न्यूज चैनल वाले तुम दोनों के लव मैरिज होने की बात कह रहे थे, ऊपर से तुमने एक बार भी मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। तुम बिना वजह किसी को सफाई नहीं देते हो, लेकिन आज बात करने के लिए इतनी दूर आए हो तो बात मामूली नहीं रही होगी वेद, मिहिका ने गंभीर आवाज में कहा। उन दोनों की भले ही शादी ना हुई हो, लेकिन मिहिका वेद को अच्छे से समझती थी और उन दोनों के बीच एक अनकहा सा दोस्ती का रिश्ता था। मिहिका अच्छे से जानती थी कि वेद उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन हाँ, अगर उसने उसे अपनी दोस्त माना था तो वो हर एक रिश्ते को सच्चाई से निभाने में यकीन करता था। बहुत कुछ है, गाड़ी स्टार्ट करो और आगे से इस तरह अचानक ब्रेक मत लगाना, वेद बोला। उसके कहने पर मिहिका ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में वे दोनों उदयपुर की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जो बिल्कुल शांत थी। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस जहां आसपास पानी था और पानी के ऊपर पुल बना हुआ था। वो मिहिका की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और उसकी फेवरेट जगह भी। ज्यादातर वेद और वो वहीं पर मिलते थे। वेद और मिहिका पुल के ऊपर खड़े थे, उन दोनों का अक्स पानी में दिख रहा था। वहां आते ही मिहिका ने वेद से पूछा, तुमने सबके सामने उसे अपनी पत्नी कहा था, इसका मतलब अंकुश राजावत सच बोल रहा था? तुमने उस लड़की को किडनैप किया था? बोलते हुए मिहिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। वेद ने हां में सिर हिलाकर कहा, हां, क्योंकि वो देवराज ठाकुर की पोती है। इतने टाइम नाद मिलने आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक झटका दो। घर पर किसी को पता चल गया कि तुम उस परिवार की लड़की को उनकी भाभी बनाकर लाए हो, तब तुम्हें आइडिया भी है वे सब तुमसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद उनका भरोसा तुम पर से उठ जाए। वेद, तुमने ये ठीक नहीं किया, मिहिका ने नाराजगी जताते हुए कहा। चौहान फैमिली और वेद देवराज और उसके परिवार से कितनी नफरत करते थे, ये मिहिका से छुपा हुआ नहीं था। उसे मारने जा रहा था, पर सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गईं कि बचाना पड़ा। सोचा था कि कुछ महीने बीत जाने के बाद उसे फैमिली से दूर ले जाकर उसके परिवार की तरह खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके साथ रहते हुए पता चला कि वो इनोसेंट है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम अनाथ हो गए थे, और देखा जाए तो मेरे भाई बहनों को मैंने किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। परिवार तो उसका भी उजड़ा था, पर अफसोस कि उसे कभी वो सिक्योरिटी और प्यार नहीं मिला। उसने बहुत कुछ झेला है मिहिका, वो सब जानने के बाद मारना तो दूर की बात है। मेरे दिल में बस यही ख्याल आता है कि उसे सारी दुनिया से छुपाकर सेफ रख सकूं। वेद अपने जज्बातों में बिना सोचे समझे बस बोले जा रहा था। एक मिहिका ही थी जिसके सामने वो अपना दिल खोलकर रख सकता था। ये बात शिवांशा तक को नहीं पता थी कि वेद उसके लिए क्या महसूस करता है। जैसे जैसे वेद बता रहा था वैसे वैसे मिहिका को एहसास हो रहा था कि वेद आज आखिर उससे मिलने क्यों आया है। मिहिका फिर भी बिल्कुल शांत थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो तुमने उसे मारने के बजाय उसे बचाने का डिसीजन लिया है? वेद ने बिना कुछ बोले हां में सिर हिला दिया। मिहिका ने गहरी सांस ली और बोली, सिर्फ इतनी बात बताने के लिए तो तुम मेरे पास नहीं आए होगे वेद। तो जो काम पिछले 12 साल में मैं नहीं कर पाई वो 3 महीने में उस लड़की ने कर दिया। फाइनली किसी ने तो तुम्हारे दिल में जगह बनाई। अभी ऐसा कुछ नहीं है, वेद जल्दी से बोला। मेरे सामने तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने की। हमने डिसाइड किया था कि हम शादी ना भी करेंगे तो हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। या तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो। इस शादी की सफाई देने के लिए तुमने मुझे एक मैसेज या कॉल करना तक जरूरी नहीं समझा। एहसास भी है कि जब मैंने टीवी पर यह न्यूज़ देखी थी तब मेरे दिल पर क्या बीती होगी। फिर भी मैंने खुद को शांत रखा ये सोचकर कि एक दिन तुम जरूर मेरे पास सब सच बताने आओगे। तुम मानो या ना मानो वेद, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि उसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। प्यार करने लगे हो तुम उसे, मिहिका ने भारी आवाज में कहा। हालांकि उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वो वेद के दिल में खुद के लिए प्यार पैदा नहीं कर पाई, लेकिन मिहिका काफी मैच्योर थी। उसने दिल ही दिल में पहले ही खुद को समझा लिया था कि वेद और उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैंने उससे टाइम मांगा है, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं कि मैं क्या करूं। वो मुझसे बहुत छोटी है, उसे अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है और तुम जानती हो मैं उसे वो खुशी नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करती है। उसने पहले ही अपनी लाइफ में काफी कुछ बुरा देखा है, वेद ने परेशान आवाज में कहा। टाइम मांगा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में साथ आने का ख्याल है। वेद, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि अगर तुम्हारे दिल में उस लड़की को लेकर जरा सी भी फीलिंग है तो प्लीज उसे एक मौका दो, खुद को एक मौका दो। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम उसे खुशी नहीं दे पाओगे, जबकि मेरा तो मानना है कि वो लड़की इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसे वेद सिंह चौहान जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। मिहिका ने वेद को समझाया।
पर मैं उसका सच बदल नहीं सकता हूं, वो देवराज की फैमिली से बिलोंग करती है। और वेद बोलते हुए रुक गया। उसके दिल की कश्मकश को देखकर मिहिका ने वेद के हाथ पर अपना हाथ रखकर शांत लहजे में कहा, जो बात तुम समझ सकते हो वो तुम्हारी फैमिली भी जरूर समझेगी। बस एक बार उनसे बात करके तो देखो कि उसका दिल साफ है और उसके दादा ने जो भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या तुम्हें लगता है वे समझेंगे? वेद ने भौंहें उठाकर पूछा। जब तुम समझ गए हो तो वे भी जरूर समझेंगे, मिहिका ने जवाब दिया। शिवांशा को लेकर वेद के दिल में जो उलझन थी वो मिहिका से मिलते ही दूर हो गई थी। पर साथ ही अगर वेद शिवांशा के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचता तो मिहिका के इतने सालों के इंतजार और प्यार को वहीं पर विराम लग जाता। वेद ने मिहिका की आंखों में देखा। भले ही वो चेहरे से कुछ ना कह रही हो लेकिन आंखों में उठ रहे जज्बातों को वो काबू नहीं कर सकती थी। आई एम रियली सॉरी मिहिका, वेद ने नजरें झुकाकर कहा। ये बिल्कुल मत करो वेद, मैंने आज तक तुम्हें नजरें झुकाए नहीं देखा और ना ही आगे देखना चाहती हूं। अब मैं बच्ची नहीं रही जो प्यार नहीं मिला तो दुख मनाऊंगी। हाँ थोड़ा बुरा एक बार लगेगा, नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में प्यार एक ऐसा इमोशन है जो आप जबरदस्ती करके हासिल नहीं कर सकते हो, मिहिका ने जवाब दिया। वेद ने नजर उठाकर मिहिका की तरफ देखा और उसकी बात पर हां में सिर हिलाया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे चाचा जी तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। पिछले 3 महीनों में जब भी वे मुझसे मिले थे उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैंने उन्हें पहले समझा दिया था और आगे भी समझा दूंगी। तुम किसी के साथ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं हमेशा दोस्त के तौर पर ही सही लेकिन तुम्हारा साथ दूंगी, मिहिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। तुमने जिस तरह से बंसल ग्रुप को संभाला था उससे मुझे हमेशा तुम पर प्राउड होता था, और मेरी मजबूरियों को समझकर तुमने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। इस चीज की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं मिहिका, बट रियली आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है, वेद ने गहरी आवाज में कहा। अब तो मुझे देवी साबित करने पर मत आओ, खैर इस बारे में बात नहीं करते हैं। इतनी नाराजगी के बावजूद भी तुमने अक्षत को बंसल ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए भेजा, तुम उसे अच्छे से गाइड कर सकते थे, फिर यहां भेजने का क्या कारण हुआ? मिहिका ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं अपने भाई बहनों पर सख्ती नहीं दिखा पाता हूं, मुझसे बेहतर तुम उन्हें गाइड कर सकती हो, वेद ने जवाब दिया। मिहिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वेद और मिहिका वहां काफी देर तक बात करते रहे। दूसरी तरफ सुबह के 10 के करीब शिवांशा की नींद टूटी। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। वे तो अब तक ऑफिस चले गए होंगे और मैंने उन्हें उठाने के लिए कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं जगाया। दिस इज रियली बैड, आप मुझे टाइम ही दोगे तो कैसे चलेगा, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। फिलहाल उसके पास शाम तक वेद का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शिवांशा फ्रेश होकर नहाने चली गई। तैयार होकर जब वो कमरे से बाहर निकली तो आज ऊपर ही अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय नीचे जा रही थी। वेद ने कहा था कि मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। वैसे तो यहाँ सारा काम करने के लिए हाउस हेल्पर होते हैं और उनके काम का ध्यान रखने के लिए भी रानी है। फिर भी कुछ देर में लंच तैयार होने वाला है, उसी का थोड़ा देख लेती हूँ, शिवांशा खुद से बातें करते हुए नीचे आ रही थी। वेद के कहने पर उसने घर का कुछ काम सीखने और संभालने का सोचा। शिवांशा सीधे किचन में घुसी जहाँ दो कुक खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। शिवांशा को देखते ही उनमें से एक ने हड़बड़ाकर पूछा, आपको कुछ चाहिए? वे दोनों भी शिवांशा को वहां देखकर हैरान थी क्योंकि वो वहां नहीं आती थी। शिवांशा ने नामे सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस ये देखने आई थी कि आप लंच में क्या बना रही हैं। आपको कुछ अलग खाना है तो बता दीजिए, हम बना देंगी, दूसरी ने जवाब दिया। नहीं, मुझे कुछ अलग नहीं खाना, बस मैं ये देखने आई थी कि आप लोग कैसे काम करते हैं और लंच और बाकी खाने के टाइम में क्या बनता है, शिवांशा ने जवाब दिया। उसे सीधे फोन सब बताने में हिचकिचाहट हो रही थी। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए थे। उनमें से एक आगे आई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हमें आराध्या भाभी ने पहले ही बता दिया था, आप जाकर अपने कमरे में आराम कर सकती हैं, आपको कुछ चाहिए तो प्लीज ऊपर से ही कॉल कर दीजिए, हमारा मतलब है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया और वहां से जाने लगी। अचानक जाते हुए उसके कदम वहीं पर रुके क्योंकि उसके कानों में उनमें से एक कुक की आवाज पड़ी थी। अच्छा हुआ भगा दिया, मुझे तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, देखा नहीं जब पहली बार किचन में घुसी थी और वेद भैया के लिए कुछ बनाया था तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या पता अभी भी किसी बुरे इरादे से यहाँ आई होगी। 3 महीने में मैडम ने आज तक ठीक से सीढ़ियाँ उतरकर कभी इस तरफ झांका तक नहीं और आज इन्हें हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आपको मिहिका का कैरेक्टर कैसा लगा? मुझे तो इस तरह के मैच्योर कैरेक्टर लिखना बहुत पसंद है क्योंकि मेरी पर्सनली यही थिंकिंग है कि आप ना तो किसी को खुद से प्यार करने से रोक सकते हैं और ना ही नफरत करने से, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, और अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में रहने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।